अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव को सिफारिश समिति में भेजने का प्रतिनिधि सभा बैठक का निर्णय संविधान और कानून का गंभीर उल्लंघन किए होने के कारण महाअभियोग लगाना जरूरी है, सांसदों का कथन। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी तालमेल और सरकार में सहभागिता के विषय में हुआ विचार विमर्श। नेपाल में आज कोरोना के 553 नए मामले आए सामने और इसराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले दो दिन से जारी जंग में 32 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव को महाअभियोग सिफारिश समिति में भेजा है। प्रधान न्यायाधीश जबरा के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव को महाअभियोग सिफारिश समिति में भेजने के प्रस्ताव को सभा के बहुमत ने स्वीकृत किया था। इससे पूर्व महाअभियोग प्रस्ताव के ऊपर बहस के दौरान सांसदों ने कहा था कि प्रधान न्यायाधीश जबरा ने संविधान और कानून का गंभीर उल्लंघन किया है, इनमें कार्यदक्षता का अभाव है, मनोगत विश्लेषण के आधार पर सजा कम करने जैसे काम किए हैं और अन्य कई ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर उन पर महाअभियोग लगाना बहुत जरूरी है। वहीं कई सांसदों ने महाअभियोग प्रस्ताव पर देर से विचार विमर्श शुरू होने के कारण बताते हुए महाअभियोग के निष्कर्ष तक पहुंचने की बात पर आशंका जताई। बता दें कि नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुंग, नेपाली कांग्रेस की तत्कालीन सचेतक पुष्पा भूषाल और नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रमुख सचेतक जीवन राम श्रेष्ठ द्वारा किया गया महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन कानून मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू सहित 98 सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ विक्रम संवत 2078 फागुन 1 गते संसद में दर्ज हुआ था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक सावन 24 गते मंगलवार के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनावी तालमेल संबंध में विचार विमर्श किया। लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के मुताबिक आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई मुलाकात में अपनी मांगे पूरी करवाने और चुनाव में गठबंधन करने संबंध में सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। उनसे मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि नागरिकता संबंधी विधेयक पारित हो चुका है और लोसपा के कार्यकर्ताओं उनकी रिहाई के लिए उन पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। साथ ही वरिष्ठ नेता महतो ने यह भी बताया कि 5 दलीय गठबंधन में लोसपा के भी शामिल होने और सरकार में सहभागी होने के संबंध में भी सकारात्मक बातचीत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री देउवा सहित सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की और लोसपा की ओर से अध्यक्ष महंत ठाकुर, नेतागण राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, अनिल कुमार झा, लक्ष्मण लाल कर्ण लगायत सहभागी थे। आगामी चुनाव के लिए आज 5 राजनीतिक दलों ने दल पंजीकरण करवाया। निर्वाचन आयोग ने आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने वाले प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए आज से दल पंजीकरण का काम शुरू किया है। बता दें कि आगामी प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए आयोग ने सावन 19 गते तक दल पंजीकरण के लिए आवेदन करने को कहा है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ ने कहा कि पर्यटन उद्योग के पुनरुत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। काठमांडू विश्वविद्यालय और नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान के बीच होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई संबंध में समझौते के लिए आज मंत्रालय में आयोजित समारोह में मंत्री श्रेष्ठ ने ये बात कही। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। वन तथा वातावरण मंत्री प्रदीप यादव ने वृक्षारोपण कर वातावरण और अपने गांव को हरा भरा बनाने का आग्रह किया। आज परसा की बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 स्थित बाल मंदिर प्रांगण में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंत्री यादव ने कहा कि वन जंगल को बचाने और हरियाली बढ़ाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने ललितपुर के मेडिसिटी अस्पताल में इलाज करा रहे नेपाली कांग्रेस के नेता एवं सांसद प्रदीप गिरी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति की ओर से उनके सूचना तथा संचार विज्ञ टीका ढकाल ने आज अस्पताल पहुंचकर नेता गिरी से मुलाकात कर स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखंड को बधाई तथा सफल कार्यकाल की शुभकामना दी। आज उपराष्ट्रपति पुन ने शुभकामना संदेश भेजकर भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के सफल कार्यकाल की कामना भी की। आज देशभर में कोरोना वायरस के 5,659 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 433 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं और आज एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले दो दिन से जारी जंग में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हवाई हमले शुरू किए थे जिनमें हमास का सीनियर कमांडर तायरसीर अल जवारी मारा गया था। आज हुए हमले में एक और कमांडर मारा गया। इजरायली सेना ने कहा एयर स्ट्राइक में हमास का दूसरे टॉप कमांडर खालिद मंसूर मारा गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री एयर लेपिड ने कहा कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के खतरे को देखते हुए ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में PIJ के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। इसराइली हमले के जवाब में PIJ ने इसराइल में कम से कम 100 रॉकेट दागे हैं। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को इसराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन होम से बीच में ही नष्ट कर दिया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को सिफारिश समिति में भेजने का प्रतिनिधि सभा बैठक का निर्णय संविधान और कानून का गंभीर उल्लंघन किए होने के कारण महाभियोग लगाना जरूरी है सांसदों का कथन। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी तालमेल और सरकार में सहभागिता के विषय में हुआ विचार विमर्श। नेपाल में आज कोरोना के 553 नए मामले आए सामने और इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले दो दिन से जारी जंग में 32 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।